आस्तिक के चेहरे और बदन पर साबुन लगा हुआ था, उसकी कमर पर तौलिया बंधा था और उसकी आंखें बंद थीं। अरुणिमा उसका हाथ पकड़कर उसे आगे ले जा रही थी। गांव की औरतें घूंघट के अंदर से आस्तिक को देखकर हंस रही थीं। आस्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी आंखें बंद थीं। अरुणिमा, तुम कहाँ ले जा रही हो मुझे? वो हैरानी से बोला। अरुणिमा आस्तिक का हाथ पकड़कर बोली, आस्तिक, मैं तुम्हें पानी के पास ले जा रही हूँ ताकि तुम अपने शरीर से साबुन साफ कर सको। बस देखो, थोड़ी ही दूर है, हम पहुँच गए। अरुणिमा आस्तिक को कुएं के पास ले आई और वहाँ एक चबूतरे पर बैठा दिया। गांव की आरती कुएं से पानी निकालते हुए आस्तिक को देखकर हंस रही थी। बिटिया, वैसे तुम्हारे ये एकदम अंग्रेजी फिल्मों के हीरो जैसे लगते हैं, बिल्कुल कंटाप, एक औरत ने अरुणिमा से कहा। उसकी बात सुनकर कुछ औरतें मुंह दबाकर हंसने लगीं। दूसरी औरत बोली, अरे ओ सुलक्षणा, तूने कब अंग्रेजी फिल्में देखी? चुपचाप कर, वही देखा करती है क्या? और क्या क्या देखती है अंग्रेजी फिल्मों में? वहां पर और भी हंसी ठिठोली होने लगी, लेकिन आस्तिक एकदम हैरान था। अरुणिमा, तुम कहाँ हो और तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? ये इतनी सारी आवाज़ें क्यों आ रही हैं? मुझे जल्दी से पानी दो, वो हवा में हाथ हिलाते हुए बोला। अरुणिमा हंसते हुए उन औरतों की बातें सुन रही थी। फिर उसने आस्तिक से कहा, हाँ आस्तिक, बस दो मिनट, बाल्टी भरने ही वाली है। फिर अरुणिमा ने उस औरत से कहा जो कुएं से पानी निकाल रही थी, आंटी जी, जल्दी से पहले मुझे एक बाल्टी पानी दे दीजिए ना। हाँ बिटिया, तुम्हारे लिए ही पानी भर रही हूँ, पर ये कुआं है, इसमें टाइम लगता है। वैसे बिटिया, एक बात बताओ, तुम्हारे मर्द के पेट पर ये गड्ढे क्यों हैं? तुम इसे ठीक से खाना नहीं देती क्या? वो औरत कुएं से रस्सी खींचते हुए बोली। आस्तिक ने जल्दी से अपने पेट पर हाथ रख लिया और हैरानी से बोला, अरुणिमा, तुम मुझे पानी दे रही हो या नहीं? उसे गुस्से में देखकर अरुणिमा हंसते हुए बोली, अरे बस दो मिनट, बाल्टी भरते ही तुम्हें पानी दे रही हूँ। फिर उसने उस औरत से कहा, आंटी जी, ये गड्ढे नहीं है, इसे ऐप्स कहते हैं और ये जिम में कसरत करके बनाए जाते हैं। क्या ये छोटे छोटे बिस्किट जैसी चीज़ें कसरत करने से बनती हैं? अरे बोलो भला, हमारे गाँव के मर्द तो खेतों में काम करके ये बना लेते हैं। अपने आदमी को बोलो जिम विम छोड़कर खेतों में लग जाए, इससे अच्छे बिस्किट बन जाएंगे, वो औरत हैरानी से बोली। वहां पर फिर से हंसी ठिठोली होने लगी। उसके बाद दूसरी औरत ने आस्तिक के टैटू को देखते हुए कहा, वैसे एक बात बताओ बिटिया, ये तुम्हारे आदमी ने अपने बदन पर इतनी रंगा पुताई क्यों कर रखी है? ये गोदना क्यों करवाया है इसने? इतना अच्छा कामदेव जैसा बदन है, उसके ऊपर ऐसे राक्षस जैसी छवि कौन बनवाता है? अरुणिमा मुस्कुराते हुए बोली, आंटी जी, इसे गोदना नहीं कहते, इसे टैटू कहते हैं और ये आस्तिक ने जर्मनी से बनवाया था, इसीलिए तो बिल्कुल रियल जैसा लगता है। वैसे आस्तिक की बॉडी पर टैटू अट्रैक्टिव भी लगता है। तब तक दूसरी औरत पानी लेकर वहां आ गई। अरुणिमा ने आस्तिक को पानी की बाल्टी देते हुए कहा, आस्तिक, पानी आ गया है। आस्तिक ने आव देखा न ताव जल्दी से एक एक मग पानी लेकर जोर जोर से अपने ऊपर डालने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गईं। उसने देखा कि वो बिल्कुल खुले कुएं के पास था और आसपास से लोग आ जा रहे थे। गांव की सारी औरतें कुएं के आसपास बैठी थीं, कुछ बर्तन धो रही थीं, कुछ कपड़े धो रही थीं, तो कुछ अपने बच्चों की पॉटी साफ कर रही थीं। लेकिन सारी औरतें घूंघट के अंदर से आस्तिक को ही देखकर हंस रही थीं। ये देखकर आस्तिक जोर से चिल्लाया, अरुणिमा! सारी औरतों ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। अरुणिमा ने भी, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तो यहीं पर हूं ना, उसने हैरानी से आस्तिक से कहा। आस्तिक ने जल्दी से इधर उधर देखा। वहां जो औरत कपड़े धो रही थी, उसके कुछ सूखे कपड़े पास में रखे हुए थे। उसने जल्दी से एक कपड़ा उठाया और अपने ऊपर डाल लिया। पागल हो गई हो क्या, इतनी सारी औरतों के बीच मुझे बिना कपड़ों के लेकर आ गई? शॉल की तरह कपड़ा डालते हुए आस्तिक गुस्से में बोला। लेकिन उसकी बात सुनकर अरुणिमा ने उल्टा उसे डांटते हुए कहा, तो तुम ही तो मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें नहाना है, तुम्हें नहाना है, लो नहा लो, और मैं तुम्हें यहाँ लाकर कौन सा क्राइम कर दिया? तुम्हारे मुंह पर साबुन लगा हुआ था और बाथरूम में पानी खत्म हो गया था, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, वरना सारे दिन आंखों में साबुन लगाकर घूम रहे होते। आस्तिक घूरती हुई नजरों से उन सारी औरतों को देखकर बोला, ये ज्यादा अच्छा होता कि इतनी सारी औरतों ने मुझे बिना कपड़ों के देख लिया है। तुम्हें मालूम नहीं मैं कितने एम्बैरस फील कर रहा हूँ? तुम क्यों एम्बैरस फील कर रहे हो? शहर में जब स्विमिंग पूल के अंदर सिर्फ बॉक्सर में उन बिकनी पहनी हुई लड़कियों के बीच में नहाते थे, तब तो तुम्हें एम्बैरस नहीं लगता था। काश आस्तिक अपनी आंखें बंद कर लेता और वहां से तेज कदमों से चलते हुए कहता, तुम बैठी रहो यहाँ पर अपनी चुगली गैंग के साथ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पर आस्तिक को उस तरफ जाते हुए देखकर अरुणिमा जोर से कहती है, आस्तिक, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, दादी जी का घर इस तरफ है और यहाँ से निकलोगे भी तो कैसे? कपड़े तो घर पर ही रखे हैं ना? गुस्से में पलटकर अरुणिमा को देखते हुए आस्तिक पैर पटकते हुए कहता है, जा रहा हूँ तुम्हारी दादी जी के घर पर और कपड़े पहनकर चला जाऊंगा यहाँ से, तुम्हें आना है तो आ जाओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा हाईवे का रास्ता। अरुणिमा मुस्कुराते हुए आस्तिक को देखती रह जाती है और आस्तिक वहां से घर की तरफ चला जाता है। उसके बाद वो औरतें जो अरुणिमा और आस्तिक के छोटे मोटे झगड़े का मजा ले रही थीं, अरुणिमा के पास आती हैं। बेटी, तुम्हारा पति तो बहुत गुस्से वाला है, कैसे झेलती हो इसे? एक औरत कहती है। अरुणिमा मुस्कुराते हुए कहती है, अब तो आदत हो गई है। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारे आदमी का गुस्सा बहुत भयंकर है, लेकिन औरत चाहे तो बड़े से बड़े क्रोध को अपनी एक इशारे पर शांत कर सकती है। औरत जितना चाहे उतना खुद को कठोर करने की कोशिश कर ले, लेकिन कमरे में आते ही उसकी सारी कठोरता सिर्फ कमर के नीचे तक सीमित हो जाती है। इसलिए औरत के पास ये ब्रह्मास्त्र होता है, वो चाहे तो इससे अपने पति को वश में कर सकती है और चाहे तो इसी से अपने पति को आज़ाद कर सकती है, दूसरी औरत कहती है। अरुणिमा हैरानी से उनकी बातें सुन रही थी। दूसरी औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये गलत नहीं कह रही हूँ। देखो, वैसे तो तुम और तुम्हारे पति एक साथ दिखने में बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन तुम्हारी बातों से अभी भी ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों एक दूसरे के पास होकर भी एक दूसरे से दूर हो। और इन दूरियों को खत्म करने का सिर्फ एक ही उपाय है, तुम अपने पति को प्यार से अपने काबू में करो। अरे, प्यार से तो बड़े बड़े राजा महाराजा घुटने टेक देते हैं, तो तुम्हारा पति क्या चीज़ है? अरुणिमा एकदम से सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कुछ गाड़ियाँ गाँव में एंटर हो रही हैं। गांव में गाड़ियों को देखकर वो एकदम से हैरान हो जाती है और उन गाड़ियों को देखकर वहां की औरतें भी घबरा जाती हैं। सबके चेहरे पर घबराहट आ जाती है। गाड़ियां अरुणिमा के सामने से होकर आगे बढ़ रही थीं और उसने देखा कि सारी गाड़ियां दादीजी के घर के सामने आकर रुक गईं। शंभू अभी अभी खेतों से घर आया था और आंगन में रखी बाल्टी से पानी लेकर अपने पैर साफ कर रहा था, जब उसने देखा कि बाहर गाड़ियां आकर रुक गई हैं। सारी गाड़ियां देखकर शंभू के चेहरे पर घबराहट आ गई। आस्तिक जो घर के अंदर था और अपने कपड़े बदल रहा था, उसने बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। अरे ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई है? बाहर निकल, हमारा पैसा खाकर तू मर भी नहीं सकती क्या?